पाठ 22, अध्याय 22 और 23।
उत्पत्ति अध्याय 22 सभी पर है।
इन चीजों के बाद को अंततः कहना का इब्रानी तरीका है। यह बीत चुके समय की एक अपरिभाषित अवधि का वर्णन करता है, लेकिन आम तौर पर इसमें काफी समय लगता है। बाइबल में कुछ स्थानों पर समय इतना लंबा है और परिस्थितियां इतनी विकसित हो चुकी हैं कि हम कह सकते हैं कि एक युग समाप्त हो गया है और दूसरा युग शुरू हो रहा है। अब्राहम का अबीमेलेक के साथ व्यवहार पिछले अध्याय के अंत में दर्ज किया गया है, तो संभवतः कम से कम कई वर्ष बीत चुके हैं। यह अध्याय उत्पत्ति 22, जिसमें केवल 24 पद हैं, ऐसा लगता है जैसे हम एक विशाल पर्वत पर चराज गए हैं, इसके व्यापक आधार से शुरू करते हुए अपने रास्ते को ऊपर की ओर घुमाते हुए और अक्सर नई जमीन तोड़ते हुए, कभी कभार कभी कभी चक्कर लगाना, रुकें और बाहर डेरा डालें और इस पर विचार करें कि हम कितनी दूर आ गए हैं और अब आखिरकार हम संकीर्ण और ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं। फिर भी शिखर पर पहुंचने के बारे में कहने को कितना कुछ है। जैसा कि जीवन में अधिकांश चीजों के साथ होता है, यह आगमन नहीं बल्कि यात्रा है जो अपने साथ इतना ऐतिहासिक महत्व रखती है। इसीलिए उत्पत्ति 22 में हमें आगमन की जो कहानी सुनाई गई है वह सटीक और वचनों की मितव्ययता के साथ है। कृपया समस्त बाइबल लेखन की इस अनूठी शैली पर ध्यान दें। स्पष्टीकरण और वाक्पटुता का अधिकांश समय अंतिम मौलिक घटना के लिए मंच तैयार करने में व्यतीत होता है, लेकिन जिस घटना की ओर इसने इशारा किया है उसे आम तौर पर कम भावना या विस्तार के साथ बताया गया है। यह उस युग के लिए या उस मामले के लिए, किसी भी युग के लिए, मानव लेखन और गद्य के लिए बहुत गैर विशिष्ट है, जब उन पृथ्वी विध्वंसक घटनाओं से निपटते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को आकार दिया है। अतीत के महान लेखन मिस्र राज घराने की 5000 साल पुरानी कब्रों से और असीरियन और बेबीलोनियों के विशाल कीलाकार अभिलेखों से और फारसी, ग्रीक और रोमन युग के लेखों की महाकाव्य गाथाओं से लिए गए हैं, जिन्हें कॉलेज में पढ़ने की आवश्यकता होती है। कॉलेज ठीक इसके विपरीत करती है। वे कहानियां अपना सारा समय राजाओं और सैन्य अगुओं की प्रशंसा और महिमा करने और एक महान विजय के दिन या एक भव्य दृष्टि की परिणति की एक विस्तृत और अतिरंजित कहानी बताने में बिताती है। फिर भी बाइबल के अनुसार जल प्रलय से पहले बिताए गए सभी समय को देखें, यह समझाते हुए कि मानव जाति ने परमेश्वर की ओर क्यों रुख किया था, लेकिन जल प्रलय के बारे में कितने कम और अनमोल वचन दर्ज है। अपने जीवन के लिए चिल्ला रहे लोगों, फूली हुई लाशों से पट्टी धरती, सभी डूबते पीड़ितों के बारे में कोई लंबी टिप्पणी नहीं, न ही नूह और उसके परिवार के बारे में जो उनके जीवित रहने और अन्य सभी की मृत्यु पर खुशी मना रहे थे, न ही यहोवा द्वारा दुष्टों की मौत का जश्न मना रहे थे।
और यहां अब्राहम के साथ हमारे पास अध्याय दर अध्याय अब्राहम के जीवन और उद्देश्य, उसके यात्रा के परीक्षण, उसकी शक्तियों के साथ प्रकट हुई उसकी कमजोरियां, अच्छे के साथ बुरे को समान समय, उसकी आध्यात्मिक पराजयों के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक जय के बारे में बताया गया है। और फिर उत्पत्ति 22 में हमारे पास केवल कुछ पैराग्राफ हैं जो चुपचाप लगभग अंतर्मुखी ढंग से हमें कौतुकपूर्ण उपलब्धि के बारे में बताते हैं।
उत्पत्ति 22 की यह घटना अब्राहम के जीवन का चरम है। यह कुछ मायनों में वही उद्देश्य है जिसके लिए इससे पहले सब कुछ तैयारी के अलावा था। यह भी एक दिन था जो हालांकि अपने आप में इतना महत्वपूर्ण था, वास्तव में एक प्रकार का आने वाली चीजों की छाया मात्र था।
यहूदी धर्म के लिए यह घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि कहानी को एक शीर्षक दिया गया है, अकेदा। अकेदा का अर्थ है बांधना या बंधनकारी, और निःसंदेह यह इसहाक के बंधन को संदर्भित करता है क्योंकि उसे होम बलि की वेदी पर रखा गया था। ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अध्याय पिछले अध्याय से पूरी तरह जुड़ा हुआ है।
अध्याय 21 में हमने देखा कि अब्राहम को निर्देश दिया गया था कि वह हार मान ले और अपने बेटे इश्माएल को, जिसे वह प्यार करता था और जिस पर उसने अपनी सारी आशा लगाई थी, विदा कर दे। अब्राहम को जो अपने पहले बेटे वादे के उत्तराधिकारी के रूप में लग रहा था, उसे अचानक अनिश्चित भविष्य में भेज दिया जाना था। तब जब इश्माएल जंगल में था और मृत्यु के निकट था, यहोवा या उसके दूत ने स्वर्ग से पुकारा और युवक को बचाया। एक पानी का कुआं चमत्कारिक रूप से प्रकट होता है और इश्माइल बच जाता है। इस अध्याय में अब्राहम को अब अपने शेष पुत्र इसहाक को त्यागने के लिए कहा गया है। परमेश्वर उस पुत्र को पहला जन्मदाता मानता है और अब तक अब्राहम भी ऐसा ही मानता है। जिस पुत्र के बारे में यहोवा विशेष रूप से कहता है कि वह वादा किया हुआ पुत्र है, उसे अब्राहम के ही हाथ से अब्राहम से दूर किया जाना है। इसहाक की मृत्यु से कुछ क्षण पहले यहोवा या उसके दूत ने स्वर्ग से पुकारा और युवक को बचा लिया। एक मेरहा सींग के साथ फंसा चमत्कारिक रूप से प्रकट होते हैं और इसहाक बच जाता है।
पद एक में हमें बताया गया है कि परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। यह जानकारी का एक टुकड़ा है जो हमारे पास है, जो अब्राहम के पास नहीं था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारंभिक वाक्य में हमें यह बताने का कारण कि यह एक परीक्षण है। इसलिए जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम परेशान नहीं होते हैं और आश्चर्य नहीं करते हैं कि क्या यहोवा वास्तव में किसी स्तर पर मानव बलि को मंजूरी देता है। दूसरे वचनों में हम शुरू से जानते हैं कि इसहाक जीवित रहेगा।
जाहिर तौर पर कम से कम यह प्राचीन संतों और विद्वानों के लिए स्पष्ट था। अब्राहम को इसहाक को होम बलि के रूप में चढ़ाने का परमेश्वर का निर्देश रात में एक सपने या एक दर्शन के दौरान आया था, क्योंकि हमें बताया गया है कि रात के दौरान इस विनाशकारी आदेश को प्राप्त करने के बाद अगले क्षण की शुरुआत में अब्राहम उठा और उसका पालन करना शुरू कर दिया।
यहां होम बलि के लिए प्रयुक्त इब्रानी वचन ओलाह है। जब हम लैव्य व्यवस्था पहुंचेंगे तो हम यह वचन बहुत सुनेंगे। होम बलि के 5 प्राथमिक प्रकार थे और ओलाह केवल एक है, हालांकि यह उन सभी में प्रमुख है। अभी के लिए बस यह जान लें कि 5 प्रकार के बलिदानों में से प्रत्येक को जला दिया गया था। वे सभी होम बलि थे, इसलिए ओलाह शीर्षक का अर्थ केवल किसी भी प्रकार की भेंट जो आग में जला दी जाती है नहीं है, बल्कि ओलाह एक विशिष्ट अर्थ के साथ एक विशिष्ट प्रकार की जली हुई भेंट है। और 2 तत्व हैं जो प्रत्येक 5 प्रकार के बलिदानों को एक दूसरे से अलग करते हैं। 1, जो बलि चढ़ाया जाना था उसमें क्या शामिल था, और 2, उस विशेष बलि चढ़ाने और संबंधित अनुष्ठान का दिव्य उद्देश्य और कार्य।
आइए उस स्थान पर चर्चा करने का यह अवसर न चूकें जहां अब्राहम को इसहाक को इस औपचारिक बलिदान के लिए ले जाने का निर्देश दिया गया था। उसे मोरिया की भूमि पर जाने के लिए कहा गया था, एक पहाड़ी की चोटी पर, जिसे परमेश्वर स्वयं इंगित करेंगे, इसलिए माउंट मोरिया की परंपरा विकसित की गई है। आज ये ज्ञात है कि माउंट मोरिया यरूशलेम में है। प्रश्न जिस पर विद्वानों का तर्क है कि इसमें एक तीव्र विभाजन रेखा होती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति इब्रानी है या अन्य जाति ईसाई। यहूदियों का मानना है कि माउंट मोरिया वह जगह है जहां मंदिर हुआ करता था और किसी दिन फिर अस्तित्व में रहेगा। वह स्थान जिसे आज टेंपल माउंट कहा जाता है और जहां मोहम्मद को समर्पित एक इस्लामी मंदिर का विशाल सुनहरा गुंबद क्षितिज पर हावी है। हालांकि अधिकांश अन्य जाति ईसाई विद्वान आपको बताएंगे कि माउंट मोरिया पर्वत है सूली पर चढ़ाए जाने का, वह स्थान जहां यहोशुआ को रोमनों द्वारा मार डाला गया था, और आम तौर पर कहें तो यरूशलेम पर्वत है में 2 प्रतिद्वंद्वी स्थान है जहां कथित तौर पर वह महत्वपूर्ण घटना घटी थी। निःसंदेह इनमें से कोई भी टेंपल माउंट क्षेत्र में नहीं है।
जैसा कि कहा गया है, यह समझने की जरूरत है कि टेंपल माउंट पूरे माउंट मोरिया को कवर नहीं करता है। माउंट मोरिया मूल यरूशलेम का हिस्सा भी नहीं था जिसे दाऊद शहर के नाम से जाना जाता था, बल्कि दाऊद शहर एक बड्ढी पहाड़ी की ढलान के नीचे स्थित था और माउंट मोरिया उस पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था। क्रूसीकरण स्थल के रूप में चुने गए स्थानों में से एक तकनीकी रूप से संभवतः माउंट मोरिया का हिस्सा है, जबकि दूसरा बिल्कुल नहीं है। हम ठीक ठीक उस स्थान पर नहीं पहुंचेंगे जहां यहोशुआ को फांसी दी गई थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उस समय मौजूद अच्छी तरह से प्रलेखित यहूदी व्यवस्था और पौलुस द्वारा हमें दिए गए कुछ बहुत मजबूत संकेतों के अनुसार मुझे नहीं लगता
कि यह कोई अन्य पारंपरिक स्थान है। सूली पर चढ़ने की बात सही है। अब जिस समय अब्राहम को मोरिया की यात्रा करने का निर्देश दिया गया था, वह और उसका परिवार बेरशेवा में थे। बेरशेवा सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर यरूशलेम से लगभग 50 मील पर था। तो यह एक बहुत अच्छी यात्रा थी जो उसके सामने थी। सोचने के लिए और इस यात्रा के कष्टदायक उद्देश्य से पीछे हटने के लिए बहुत समय था। हमें पद 3 में कुछ दिलचस्प जानकारी दी गई है। हो एक कि अब्राहम 2 नौकरों को अपने साथ ले गया और 2 कि उन्होंने वेदी पर आवश्यक आग के लिए लकड़ी काट ली और उसे यात्रा में साथ ले गए। पिछले सप्ताह आपको इसहाक और यहोशुआ के बीच कई समानताएं दी गईं। कुछ टिप्पणीकारों का कहना है कि अब्राहम द्वारा अपने साथ 2 नौकरों को ले जाने की कार्रवाई 2 अपराधियों को यीशु के बगल में संबंधित क्रूस पर लटकाए जाने से मेल खाती है। संख्या 2 के अलावा मुझे डर है कि समानताएं यहीं समाप्त हो जाती हैं जब तक कि पर्याप्त मात्रा में रूपक न डाला जाए। सच तो यह है कि अब्राहम जैसे कद का कोई व्यक्ति कभी भी नौकरों के बिना यात्रा नहीं कर सकता था और उनके समय में साथ आने वाले नौकरों की न्यूनतम पारंपरिक संख्या 2 थी। 2 लोगों का समूह यह दर्शाता था कि यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। हालांकि पद 6 में हमें बताया गया है कि मोरिया पर्वत पर पहुंचने पर अब्राहम ने इसहाक की पीठ पर वेदी की आग के लिए लकड़ी रख दी, वही लकड़ी जो उसकी मृत्यु और जलने का साधन बन गई, और कि वह उसे पहाड़ी पर वेदी के स्थान तक खींच ले जाए। यह यीशुआ को अपनी पीठ पर लकड़ी का क्रॉस धारण करने की आवश्यकता के बिल्कुल समानांतर है जो उसकी मृत्यु का साधन बन जाएगा, अर्थात बलिदानी मृत्यु।
अब्राहम द्वारा बेरशेबा से अपने साथ लकड़ी लाने की यह क्रिया भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि उन्हें 50 मील तक भारी लकड़ी अपने साथ ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।
वास्तव में वे अपनी यात्रा ऐसी जगह से शुरू कर रहे थे जहां लकड़ी कम थी और ऐसी जगह जा रहे थे जहां लकड़ी अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में थी। यरूशलेम के आसपास के पहाड़ रोम में घनी झाड़ियों और छोटे पेड़ों की कोई कमी नहीं थी।
हमें बताया गया कि यह 3 दिन की यात्रा थी जो कि उनके द्वारा तय की गई 50 मील की दूरी के लिए बिल्कुल सही है। जब वे पहुंचे तो अब्राहम ने नौकरों से कहा कि वे उसके और इसहाक के साथ वेदी तक नहीं जा सकते, लेकिन वे शीघ्र ही उनके पास लौट आएंगे। क्या अब्राहम थोड़ा
सफेद झूठ बोल रहा था? क्या आप इसहाक या उसके सेवकों को इसहाक के मानव बलिदान से भयभीत नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यह मसीह द्वारा अपने सेवकों शिष्यों को यह बताने का प्रतीक है कि वह जा रहा है, और वह कहां जा रहा है इसका अभी तक कोई भी पता नहीं लगा सका है, परंतु वह उनके पास लौटने वाला था, जिसे हम द्वितीय आगमन के रूप में जानते हैं।
यह भी नहीं चाहते कि हम पिता और पुत्र के एक साथ बलिवेदी पर जाने के अद्भुत प्रतीकवाद को छूकें। जाहिर है दोनों आवश्यक थे। पिता अपने पुत्र की बलि के बिना कोई बलिदान नहीं कर सकता था, और पुत्र का बलिदान उसके पिता की प्रेरणा के बिना नहीं किया जा सकता था।
कुछ सप्ताह पहले हमने ईश्वर के सार और स्वरूप पर ध्यान दिया। त्रिकत्व का सिद्धांत ही सब कुछ है। जो 3 पहचान योग्य टुकड़ों या व्यक्तियों में विभाजित है उसे अलग करके वापस रख दिया और देखा कि हम अपनी इच्छा से इतनी आसानी से ईश्वर को नहीं तोड़ सकते। हमने यह भी देखा कि पुराने नियम की कई मसीहाई भविष्यवाणियां जिन्हें यीशु पूरा करने आए थे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि
याहवे को छेद दिया जाएगा और जैतून के पहाड़ पर वापस आ जाएगा। खैर, ईश्वर के 3 टुकड़ों में सिद्धांत के साथ यहोवा एक व्यक्ति है और यहोशुआ दूसरा है। तो क्या यह यहोवा या यीशु है जो जैतून के पहाड़ को छूने जा रहा है? मैं कहता हूं कि परमेश्वर की एकता इतनी पूर्ण है कि हम इसे 3 टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से उनके कई गुणों के बारे में बात कर सकते हैं। इनमें से एक गुण है उद्धार, और उद्धार का गुण उन गुणों में से एक के संदर्भ में घटित होना था जो कि ईश्वर का बड़ा गुण है जिसे हम पुत्र कहते हैं।
मुझे जो मिल रहा है वह यह है कि चूंकि ईश्वर एक है, पिता का गुण और पुत्र का गुण हर समय पूर्ण एकता में एक साथ कार्य करते हैं। यहोवा को क्रूस पर वैसे ही लटकाया गया जैसे यहोशुआ को लटकाया गया था, और यहां हम अब्राहम और इसहाक में पिता और पुत्र को देखते हैं। ये दो गुण प्रत्येक अपनी आवश्यक भूमिकाओं के साथ बलिदान की वेदी पर एक साथ आ रहे हैं। पुत्र का गुण इसहाक बलिदान होना था, और पिता का गुण अब्राहम बलिदान को आरंभ करना और स्वीकार करना था। जब यहोशुआ मरा तो यह उसका मानवीय पहलू था, जो मरा परमात्मा जीवित था। जब यहोशुआ की मृत्यु हुई तो यह पुत्र का गुण था जो बलिदान था, यह पिता का गुण था जिसने उस बलिदान को शुरू किया और स्वीकार किया।
पद सात में जो संभवतः एक बहुत ही असहज चुप्पी थी, वह तब टूटी जब इसहाक ने अंततः स्पष्ट रूप से पूछा, पिता बलिदान के लिए मेमना कहां है? यह किसी मासूम बच्चे का भोला भाला सवाल नहीं था। प्राचीन यहूदी लेख कहते हैं कि इसहाक इस समय 37 वर्ष का था। यूसुफ, जो ईसा मसीह के समय में रहते थे, का कहना है कि धर्म ग्रंथों में इस बिंदु पर इसहाक की उम्र 25 वर्ष से अधिक थी। इसहाक पूर्णतः परिपक्व व्यक्ति था, तो 25 से 37 की उम्र के बीच कहीं ना कहीं वास्तविकता छिपी होती है। 30 शायद सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसहाक कोई बच्चा नहीं था। यह विचार कि इस समय इसहाक एक ग्रेड स्कूल आयु वर्ग का लड़का था, पूरी तरह से एक आधुनिक गैर ईसाई ईसाई आविष्कार है जो सुंदर चित्र बनाता है और एक दयनीय असहाय बच्चे को किसी ऐसी चीज में मजबूर करने का विचार है जिससे बच पाना संभव नहीं था। जैसा कि हम देखते हैं कि अब्राहम को अपने बेटे इसहाक को होम बलि बलिदान के रूप में चढ़ाने का निर्देश दिया गया था, हम केवल आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि अब्राहम के दिमाग में क्या चल रहा था। फिर भी इसहाक को बलि चढ़ाने का परमेश्वर का यह आदेश अजीब नहीं लगा होगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए मानव बलि उसके कनानी पड़ोसियों की सामान्य पूजा प्रथाओं का हिस्सा थी। जब इसहाक बांधा जाने लगा तब वह चुप हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने तत्कालीन स्थिति से संघर्ष नहीं किया, उन्होंने अपने अधिकारों या स्पष्टीकरण की मांग नहीं की, या जोर से आश्चर्य नहीं किया, मैं ही क्यों। और निसंदेह इसहाक ने, जिसे मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया था, उसने भी प्रतिरोध की पेशकश नहीं की या बलिदान की मौत को दरकिनार करने का प्रयास नहीं किया, जिसे केवल वादा किया गया बेटा ही पूरा कर सकता था। फिर भी इसहाक कोई मसीहा नहीं था। मसीहा के लिए नियत समय वह समय जिसे केवल यहोवा ही जानता था, क्योंकि केवल यहोवा ने ही वह समय निर्धारित किया था, अभी तक नहीं आया था। जैसा कि अब हम जानते हैं, वह समय 18वीं शताब्दी बाद का होगा। इसहाक को एक आध्यात्मिक सिद्धांत का पाठ और प्रदर्शन करना था, अभिषिक्त व्यक्ति नहीं। इसहाक सिर्फ एक आदमी था, और इसलिए वह कभी भी उस कीमत के योग्य नहीं हो सका जो परमेश्वर ने मांगी थी शाश्वत छुटकारा के लिए। इसलिए इसहाक को उस तरीके से मरना जैसा कि होने वाला था मानव बलि होगी, इसलिए यहोवा ने इसे एक बार रोक दिया कि परमेश्वर को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यह स्वयं परमेश्वर होने वाला था जो मनुष्य के लिए स्वयं का बलिदान देगा। यह अध्याय महत्ता से भरपूर है और एक प्रकार के मसीहा और उसके क्रूसीकरण को प्रस्तुत करने में जबरदस्त है, क्या ऐसा नहीं है? हम यहां आसानी से 2 सप्ताह अकेले बिता सकते थे, लेकिन मैं केवल ऊंचे बिंदुओं पर पहुंचने की कोशिश करूंगा ताकि फंस न जाऊं। मांस तक पहुंचने के साधन के रूप में मुझे इस कहानी में दर्शाए गए प्रकारों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दें, और फिर आपको इसका समानांतर उदाहरण दूंगा जैसा कि यह यहोशुआ पर लागू होता है। पद 2, अब्राहम को अपने इकलौते बेटे की बलि देनी है, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ा दी। पद 3, इसहाक को मौत की निंदा सुनाए जाने के 3 दिन बाद वह वेदी से उठ खड़ा हुआ। वेदी जीवित निंदा किए जाने के 3 दिन बाद मसीह मृतकों में से जीवित हो उठे। पद 6, इसहाक को पहाड़ी की छोटी तक लकड़ी ले जाने की आवश्यकता थी, जो कि होगी अपनी ही मौत के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरण, ईसा मसीह को अपना स्वयं का लकड़ी का क्रॉस, जो कि उनकी अपनी मृत्यु का साधन था, पहाड़ी
की छोटी तक ले जाने की आवश्यकता थी, जहां वह उस पर चिपक जाते और मर जाते। पद 8, इसहाक जानना चाहता था कि बलिदान के लिए मेमना कहां है, और अब्राहम ने उससे कहा कि परमेश्वर इसे प्रदान करेगा। परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के बलिदान के लिए अपने स्वयं के पुत्र बलि का मेमना प्रदान किया। पद 13,
नरभेर अब्राहम इसहाक के स्थान पर को बलिदान के रूप में प्रदान किया गया था। मसीह नर बलि का मेमना प्रावधान था, कलवरी में हमारे न्याय का उचित स्थान प्रतिस्थापित किया। पद 14, जिस स्थान पर बलिदान होना था उसे यहोवा यिरेह के रूप में याद किया जाता था, या क्योंकि हमारे कान सुनने के अधिक आदि हैं, यहोवा यिरेह अर्थ यहोवा प्रदान करता है। यहोवा ने बलिदान प्रदान किया क्योंकि कोई अन्य ऐसा नहीं कर सकता था। यह बलिदान यीशु था, देहधारी परमेश्वर। यह निश्चित रूप से रूपक नहीं है। इसहाक को जो झेलना पड़ा
वह इस बात की छाया थी कि भविष्य में लगभग 1800 साल बाद ईसा मसीह के साथ क्या होने वाला था।
इस कठिन परीक्षा के अंत में हमें बताया गया है कि दो बार प्रभु के दूत ने स्वर्ग से अब्राहम को बुलाया, पहली बार बलिदान को रोकने के लिए और दूसरी बार अब्राहम को पहले दी गई वाचाओं को सुशोभित करने के लिए। चूंकि हमने प्रभु के दूत वाक्यांश पर एक वचन अध्ययन किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय ये जो हमने पहले देखा था उससे थोड़ा अलग इब्रानी वाक्यांश है। पहला, हालांकि ध्यान दें कि प्रभु का ये दूत स्वर्ग में है, मुझे आश्चर्य है कि क्यों ये स्वर्गदूत क्यों पृथ्वी पर नहीं है, या स्वर्ग से अब्राहम से बात करने के बजाय उसके सामने आ रहा है। हालांकि अगर हम थोड़ा करीब से देखें तो शायद हमारे पास इसका कोई सुराग है। याद रखें कि प्रभु के दूत के लिए इब्रानी भाषा मलाच अर्थ दूत एदोनाई है, जिसका अर्थ है परमेश्वर। लेकिन इस बार वचन मालाच याहवे है, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है, तो इसका शाब्दिक अनुवाद यहोवा के दूत के रूप में होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि हम यहोवा के इस दूत को देखते हैं जो स्वर्ग से बोल रहा है, कहता है, मैंने अपनी शपथ खाई है। आम तौर पर जब किसी चीज की पहचान, एक स्वर या यह
प्रभु के दूत के रूप में की जाती है, तो यह कहता है परमेश्वर ने मुझे यह कहने के लिए कहा, या परमेश्वर ने मुझे वह करने के लिए कहा। स्पष्ट रूप से परमेश्वर और देवदूत के बीच एक निश्चित अंतर बना रहा है, लेकिन यहां निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है। यहोवा का यह दूत सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के समान अधिकार और व्यक्तित्व के साथ बोलता है, अर्थात मैं यह कहता हूं। मेरे दृष्टिकोण से यह काफी रहस्यमय है, फिर भी जब मैं एक मलाच एदोनई को बोलते हुए देखता हूं, जैसे कि वह ईश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, बनाम एक मलाच यहोवा अपनी इच्छा के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे इस संभावना पर विचार करना होगा कि हम दो अलग अलग प्राणियों के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में इसका महत्व क्या है, फिर मुझे फिर यकीन नहीं है, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण है, अन्यथा परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड के ईश्वर स्वयं को कैसे प्रकट करते हैं, इस संबंध में 4वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में नाइसिया परिषद के आदेशों के साथ विकसित किए गए कठोर ईसाई सिद्धांतों को स्वीकार करने में हमें बहुत सतर्क रहना होगा। सिद्धांत बनाए गए और बनाए जा रहे हैं जो कि पवित्र शास्त्र या परंपरा में कहीं भी मौजूद नहीं है, या यहां तक कि उस बिंदु तक अभ्यास में भी मौजूद नहीं है। ऐसे सिद्धांत जिनके बारे में प्रारंभिक कलीसिया के पहले 200 वर्षों में कुछ भी नहीं पता था। मैंने कई अवसरों पर टिप्पणी की है कि हमें बौद्धिक रूप से ईश्वर के सभी संभावित आयामों, या यहां तक कि केवल पवित्र ग्रंथ में उल्लिखित आयामों को 3 अलग अलग बक्सों में से एक में डालना चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक खतरनाक उपक्रम है, यह हमें उसे सीमित करने के लिए मजबूर करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहोवा का यह दूत कौन या क्या है जो अब्राहम और इसहाक की इस चरम कहानी के साथ दो बार प्रकट होता है और पहले व्यक्ति में यहोवा के बारे में बात करता है।
उसके बारे में हम नहीं जान सकते, लेकिन शायद ये एक बार फिर यह स्वीकार करने का हमारा अवसर है कि मानव जाति के लिए ईश्वर के मन को जानना या वह कौन है इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। शायद हमें यह जानने में और अधिक सहज होने की आवश्यकता है कि ईश्वर नहीं है, मनुष्य, यहाँ तक कि अतिमानव भी नहीं, वह बिल्कुल अलग प्राणी है और हमारा कर्तव्य कुछ मामलों में बस उसे स्वीकार करना है जिसे हम अनुभव या व्याख्या नहीं कर सकते। क्या प्रथमतः यह वास्तव में आस्था की परिभाषा नहीं है? किसी भी स्थिति में अब्राहम और इसहाक घर लौटते हैं और फिर हमें अब्राहम के भाई नाहोर के बारे में कुछ वंशावली दी जाती है जो अभी भी मेसोपोटामिया वापस रह रहा है। पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि नाहोर के लिए 12 बेटे सूचीबद्ध हैं, ठीक उसी तरह जैसे इश्माइल के 12 बेटे थे और अंततः याकूब के भी 12 बेटे थे। हालांकि याकूब के 12 पुत्रों के विपरीत जो इसराइल राष्ट्र का निर्माण करेंगे प्रत्येक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नाहोर के कई पुत्रों का हमें बाइबिल में फिर कभी सामना नहीं मिलेगा। हम केवल यह जानते हैं कि उत्पत्ति 22 के अंत में इस सूची के कारण उनका अस्तित्व था। उत्पत्ति 23 सभी पढ़ें।
जिस प्रकार उत्पत्ति 22 अब्राहम के जीवन और दिव्य उद्देश्य का चरमोत्कर्ष था, उसी प्रकार अध्याय 23 कुछ अस्पष्ट स्थितियों को एक साथ खींचता है और हमें अब्राहम से इसहाक में परिवर्तित करता है।
पहला अस्पष्ट स्थितियों में इब्रानी कुलमाता सारा के जीवन को बंद करना है। जब उनकी मृत्यु हुई तब वह 127 वर्ष की थी। इब्रानी परंपरा यह है कि माउंट मोरिया पर अपने इकलौते बेटे इसहाक के कारण उसे जो आघात सहना पड़ा,
स्विंग से उसने इस वृद्ध महिला के स्वास्थ्य को नष्ट कर दिया। मुझे लगता है कि यहां की माताओं के लिए सारा के अनुभव को पहचानना ज्यादा कठिन नहीं है। कल्पना कीजिए, बच्चे पैदा करने में असमर्थ परमेश्वर अंततः आपको बुढ़ापे में एक बच्चा देता है, लेकिन अब आपके पति आपको सूचित करते हैं कि परमेश्वर ने आपके बच्चे का जीवन मांगा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए सारा अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन अपने इकलौते बेटे के बिना बैठकर शोक मनाती रही। इब्रानी परंपरा यह भी कहती है कि अब्राहम 138 वर्ष का था जब उसकी प्रिय सारा की मृत्यु हुई।
विद्वानों के दृष्टिकोण से सारा की मृत्यु महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक इब्रानी की पहली मृत्यु और दफनाने के कुछ विवरण प्रदान करती है और हम पाते हैं कि अब्राहम और सारा हेब्रोन में रह रहे थे जब उसकी मृत्यु हुई, इसलिए यह स्वाभाविक है कि अब्राहम उसे वहीं दफनाना चाहेगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस समय तक अब्राहम के लिए अलग की गई भूमि का परमेश्वर का वादा पूरा नहीं हुआ था और न ही अगले 5-6 शताब्दियों तक पूरा होगा। अब्राहम दूसरों की भूमि का उपयोग करता था, दूसरों द्वारा शासित भूमि में रहता था और उसके पास कोई क्षेत्र नहीं था। यह विडंबनापूर्ण है कि अचल संपत्ति का एकमात्र टुकड़ा जिसे अब्राहम कभी अपना कह सकता था वह एक गुफा थी जिसे उसकी प्यारी पत्नी, बाद में खुद और अंततः उसके बच्चों और पोते याकूब के लिए कब्र के रूप में उपयोग किया जाता था।
बाइबल के सभी 3 महान पितृपुरुषों को हेब्रोन में दफनाया गया है। अब यह क्षेत्र इसराइल के दुश्मन फिलिस्तीनियों को सौंप दिया गया है। मुझे दृढ़ता से संदेह है कि जब दाऊद यहूदा का राजा बना तो उसने अपनी पहली राजधानी के रूप में हेब्रोन को चुना, जिसका इसराइल राष्ट्र के संस्थापकों के दफन स्थान से जूरी अद्भुत श्रद्धा से बहुत लेना देना था। जबकि अब्राहम और एफ्रोन के बीच हमने जो सौदेबाजी सत्र पढ़ा है वह हास्यास्पद नहीं तो विचित्र लगता है। एफ्रोन स्पष्ट रूप से हित्तियों नामक लोगों के बीच एक नेता था जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया था। प्राचीन अभिलेख बहुत अच्छे व्यवस्था की कारणों का खुलासा करते हैं कि अब्राहम अपने और अपनी पत्नी के लिए मकबरे के रूप में मकपेला की इस गुफा के लिए जिस सौदे का अनुसरण कर रहा था उसने वही किया जो हुआ।
मुद्दा यह था आधुनिक वचनों में अब्राहम और उसका कबीला कनान में निवासी एलियंस थे। उस दिन की खासियत यह थी कि विदेशी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, जमीन ही सब कुछ थी। एक परिवार के लिए अपनी जमीन खोना एक आपदा थी।
एक परिवार के लिए अपनी जमीन किसी विदेशी को बेचना घृणित था, फिर भी ऐसा हुआ और यह उचित था।
हालांकि भूमि का अधिग्रहण कैसे किया गया यह बहुत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए, यदि अब्राहम ने इसे एक उपहार के रूप में स्वीकार किया होता तो यह न केवल हित्तियों के लिए अपमानजनक होता कि वह ऐसा कुछ करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में इसे किसी के द्वारा यह दावा करके चुनौती दी गई होती कि इसे बेचना गलत था, सबसे पहले किसी विदेशी निवासी को भूमि। इसलिए अब्राहम एप्रोन द्वारा उपहार के रूप में गुफा की पेशकश को स्वीकार नहीं कर सका। फिर भी अब्राहम को इसके लिए सौदेबाजी में बहुत सावधानी बरतनी पड़ दी, क्योंकि अगर उसने इसे ऐसी कीमत पर खरीदा जो बाद की पीढ़ियों के लिए उचित नहीं लगता तो यह भूमि वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण था। इसलिए अब्राहम को प्रस्ताव देने के लिए मजबूर होने से पहले अब्राहम ने एप्रोन द्वारा कीमत निर्धारित करने तक इधर उधर भटकता रहा। कीमत चांदी के 400 शेकेल अधिक थे, लेकिन अब्राहम ने विनम्रता पूर्वक इस बात पर जोर देकर कहा कि वह पूरी कीमत चुकाने में प्रसन्न है। उसने अधिकांश व्यवस्था की चुनौतियों को दूर कर दिया जिसके कारण भविष्य में कभी भी वह भूमि उससे या उसके वंशजों से छीन ली जा सकती थी। दफनाने के स्थान पूर्वजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, और मैं यह कहने का साहस करता हूं कि हमारे अपने आधुनिक समाजों में भी कब्रगाहों का अभी भी अत्यधिक महत्व है। इसलिए यह पूरी प्रक्रिया शहर के कई नागरिकों के सामने हुई, हित्ती नागरिक, ताकि वे एप्रोन से अब्राहम को उस गुफा के स्वामित्व के हस्तांतरण के गवाह बन सके।